दिन भर 13 जून दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। बांग्लादेश में भारी बारिश से 70 से अधिक लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में मंदसौर में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को गिरफ्तार किया गया।
जो नौटंकी उन्होंने की है भोपाल में, उस नौटंकी को हम बेनकाब करेंगे। जिसको रक्षक का दायित्व अदा करना चाहिए वो भक्षक बन जाए और फिर उसके बाद भक्षक उपवास पे बैठ जाए, तो मैं तो कहता हूँ ये उपवास नहीं है, ये उपहास है।
भीड़ का उन्माद श्रृंखला की पहली कड़ी में सुनिए उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपने आप को भीड़ के सामने बेबस पाया।
8-7 आदमी 2 मोटरसाइकिलों पे बाइकों पे हमारे पाछे आए और उसने हमसे बोला कि गाड़ी रोक लो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मॉनसून की भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण कम से कम 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। देश के दक्षिण पूर्वी चटगांव इलाके में भूस्खलन के कारण दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस इलाके में कई लोगों की मौत उस वक्त हुई जब रात को वो अपने घरों में सो रहे थे। मौसम खराब होने के कारण राहत और बचाव कार्य में भी रुकावटें आ रही हैं। कई हिस्सों से सड़क और दूरसंचार संपर्क टूट गया है। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अरदोगान ने कई अरब देशों के कतर को अलग थलग करने की कड़ी आलोचना की है और इसे अमानवीय और इस्लामी मूल्यों के विरोध में लिया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से लगाई गई ये रोक मृत्युदंड की तरह है। उन्होंने कहा,
कतर ve Katar vatandaşlarına yönelik yaptırımların uzandığı yerlere baktığımızda çok ciddi bir yanlışın içine düşüldüğünü görüyoruz.
जब हम कतर और उसके नागरिकों पर लगे प्रतिबंधों को देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि इस मामले में एक बड़ी गलती की जा रही है। किसी एक देश के नागरिकों को अलग थलग कर देना, उनके खाने से लेकर उनके देश के बाहर जाने तक, उनके व्यापार से लेकर उनके धर्म तक, ये अमानवीय है और इस्लामी धर्म के मूल्यों के खिलाफ है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अरदोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक 7 मंजिला इमारत के गिर जाने से 15 लोग लापता हो गए हैं। देश के पूर्व में स्थित यह इमारत सोमवार रात गिर गई थी। यहां रहने वालों का कहना है कि इमारत में दरारें आ गई थी जिसके बाद पुलिस ने इसे खाली करने के लिए कहा था। इमारत में रहने वाले डेनिस मोसोटी ने बताया कि हो सकता है कि कुछ लोग अपना सामान लेने इमारत में वापस गए हों। पूरी इमारत खाली करा ली गई थी और पुलिस भी उसमें जाने वाले लोगों को रोकने के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन कुछ लोग देर से काम से लौटे थे और वो अपना सामान लेने इमारत में जाने की कोशिश कर रहे थे। हमें अब इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कुछ लोग, करीब 13 लोग इमारत के मलबे में फंस गए हैं और शायद कुछ लोगों की मौत भी हुई है। हमें अभी नहीं पता कि सच क्या है। केन्या के निवासी डेनिस मोसोटी के शब्द। फिलीपींस के मरावी शहर में फंसे आम नागरिक कथित इस्लामिक लड़ाकों से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामले में मंगलवार को फिलीपींस के 5 पुलिस कर्मचारी 5 अन्य नागरिकों के साथ मिलकर वहां से निकले हैं। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सभी पुलिस कर्मचारी मुसलमान थे और शहर से बाहर जिंदा निकलने के लिए उन्होंने अपना भेष हो सके शायद बदला हो। माना जा रहा है कि 3 हफ्ते पहले फिलीपींस और कथित इस्लामिक स्टेट के समर्थकों के बीच शुरू हुई लड़ाई के बाद मरावी शहर में अभी भी सैकड़ों नागरिक फंसे हुए हैं। जिम्बाब्वे ने अपने देश के किसानों को बचाने के लिए देश में खाद्यान्न के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि उनके किसान पूरे देश खाद्यान्न उगा रहे हैं और इस साल 20 लाख टन से अधिक मक्के का उत्पादन हुआ है। बीते साल के मुकाबले ये आंकड़ा 4 गुना अधिक है। बीते साल देश में भीषण सूखा पड़ा था जिस कारण 40 लाख लोगों के लिए देश को खाद्यान्न की जरूरत पड़ी थी। स्पेन में अधिकारियों ने पुर्तगाल और रियल मैड्रिड के एक फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने उन पर करीब 1.5 करोड़ डॉलर की टैक्स में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। अभियोजकों का कहना है कि इसका संबंध साल 2011 से 2014 के बीच उनकी तस्वीर के इस्तेमाल के अधिकार से संबंधित है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। بنگلہ دیش میں مانسون کی بارش کے کارن ہو رہے بھوسکھلن کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیا 70 کے پار پہنچ گئی ہے. ان میں سینا کے 5 سینک بھی شامل ہیں. چٹگاؤں کے پہاڑی علاقوں میں ہوئے بھوسکھلن میں درجنوں لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں. کئی علاقے الگ تھلگ پڑ گئے ہیں اور خراب موسم کی وجہ سے راحت کاریوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بنگلہ سیوا کے شبھ جیوتی گھوش سے بات کر تازہ وورن مانگا.
دیکھیے ریحان صاحب، یہ بنگلہ دیش کے چٹاگانگ ہل ٹریکس ایریا میں جو 3 ہلی ڈسٹرکٹس ہے، پہاڑی جو 3 ضلع ہے، رنگا ماٹی، بندربان اور چٹاگانگ، یہ 3 ضلعوں میں یہ لینڈ سلائڈ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لیٹسٹ کیجوئلٹی فگر بتا رہا ہے 72، مطلب 70 سے زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ ہتاہت کی گھٹنا گھٹی ہے سومبار رات سے آج صبح تک، مطلب پچھلے 24 گھنٹے میں. لیکن یہ فگر اور بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے جگہ میں ایسے ہے کہ ڈبری کے نیچے ابھی بھی لوگ ہے، ایسے انومان کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ریسکیو آپریشن فل فلیجڈ شروع نہیں ہوا.
یہ بتائیے کیا وجہ، کیا کارن بتایا جا رہا ہے اس کا؟
بتا ہے کہ ہیوی منسون، منسون ابھی شروع ہوا اس ایریا میں، اور پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں اتنے زیادہ بارش ہوا ادھر. اور ادھر جو لوکیلٹیز ہے، اس میں جو ولیجز ہے، اس کے جو گاؤں ہے، اس کے وہ بارش کی وجہ سے پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی وہ جو دھس آئے ہیں اسی سے نیچے آ گئے تھے. تو یہی مینلی ہے. اور اس میں صرف لوکیلٹیز نہیں ہے، اس میں آرمی کیمپ بھی ہے. وہ آپ کو پتا ہے وہ چٹاگانگ ہل ٹریکس ایریا وہ سینسیٹیو مانا جاتا ہے، اور اس ایریا میں بہت سارے ملٹری کیمپس ہے، بہت سارے پولیس کیمپس ہے. وہ ملٹری کیمپس بھی بہت سارے علاقہ میں تباہ ہو گئی. ایسے ایک کیمپ رنگا ماٹی، سب سے جو ڈیوسٹیٹیڈ ایریا ہے رنگا ماٹی ایریا میں، ایک پولیس کیمپ میں یہ کہا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ، مطلب 5 آرمی آفیشیلس اس میں ان کا ندھن ہو گیا.
اچھا یہ بتائیے راحت کاریہ کیسا چل رہا ہے، آسانی سے کام ہو پا رہا ہے یا دقتیں آ رہی ہیں؟
نہیں، دقت بالکل آ رہی ہے، اس لیے کہ بارش ابھی تھمے نہیں ہے. بارش ابھی بھی بہت زور بارش چل رہا ہے ادھر، اور ڈھاکہ سے ریسکیو ٹیم ادھر بھیجا گیا ہے. لیکن وہ یہ مان رہا ہے کہ اس میں جو آرمی اپریٹس اس میں چٹاگانگ ہل ٹریکس ایریا میں آلریڈی تھا، اس کے ساتھ ان کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے جگہ کوئی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مطلب اور کمیونیکیشن بالکل تھم گئی ہے. اس لیے ریسکیو آپریشن ٹیکنیکلی ابھی آپ مان سکتے ہیں، ابھی بھی حادثہ کے 24 گھنٹے ہو چکا ہے، ابھی بھی ریسکیو آپریشن فل فلیجڈ شروع نہیں ہوا. ڈھاکہ سے ٹیم ضرور روانہ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک آپریشن صحیح طرح سے شروع ہوا یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہو.
یہ تھے بی بی سی بنگلہ سیوا کے شبھ جیوتی گھوش.
سنسنی نہیں، وشوسنیتا کا دم،
بی بی سی ہندی.
اور اب کچھ خبریں بھارت سے. مدھیہ پردیش کے مندسور ضلع میں کسان آندولن میں پچھلے ہفتے 6 کسان پولیس فائرنگ میں مارے گئے تھے. مرتک کسانوں کے پریوار سے ملنے کے لیے کئی نیتا مندسور پہنچ رہے ہیں. پچھلے دنوں کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی نے پیڑت پریوار سے ملاقات کی تھی. آج پورو کیندریہ منتری اور گنا سے کانگریس سانسد جیوترادتیہ سندھیا بھی مندسور پیڑت پریوار سے ملنے آ رہے تھے، لیکن پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے. بھوپال سے شوری نیازی کی رپورٹ.
مدھیہ پردیش کے مندسور میں اب شانتی ہے، لیکن کسانوں کو لے کر راجنیتی اپنے چرم پر ہے. کانگریس کے ورشٹھ نیتا جیوترادتیہ سندھیا آج اپنے سمرتھکوں کے ساتھ مندسور جا کر پیڑت کسانوں کے پریوار سے ملنے والے تھے، لیکن انہیں اس سے پہلے ہی دھارا 144 کا واسطہ دے کر گرفتار کر لیا گیا. ان کے ساتھ سانسد کانتی لال بھوریا کو بھی گرفتار کیا گیا. جاورا کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ رام پرساد ورما نے بتایا،
انڈر سیکشن 151، 107، 116 سی آر پی سی کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، چونکہ ان کے دوارا لگاتار 2-3 گھنٹے سے دھارا 144 کا وائلنس کیا جا رہا ہے. ایسی استھتی میں ان کو گرفتار کرنا بہت آوشیک ہو گیا تھا. بار بار چیتاونی دینے کے باوجود یہ نہیں مانے، ایسی استھتی میں ہم نے ان دھاراؤں کے تحت ان کو اریسٹ کیا ہے.
اس موقع پر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کھیتر میں شانتی نہیں ہے. اس سے صاف ہے کہ مکھیہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے ڈھونگ کر کے اپنا اپواس سماپت کر دیا، جبکہ ابھی بھی یہاں پر شانتی نہیں ہے.
اور جو نوٹنکی انہوں نے کی ہے بھوپال میں، اس نوٹنکی کی بھی ہم بے نقاب کریں گے. جب سوئم پردیش میں جو جس کو رکشک کا دائتو ادا کرنا چاہیے وہ بھکشک بن جائے، اور پھر اس کے بعد بھکشک اپواس پہ بیٹھ جائے، تو میں تو کہتا ہوں یہ اپواس نہیں ہے، یہ اپہاس ہے پردیش کے انداتاؤں. میرا دائتو بنتا ہے پردیش کے ایک ناگرک ہونے کے ناطے इस क्षेत्र के साथ एक पारिवारिक रिश्ता होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि उन दुखद परिजनों से जाके मैं मिलूं और उस दायित्व और जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा।
इससे पहले आज पुलिस ने गुजरात में पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल को भी मंदसौर जाने से रोक दिया और उन्हें नीमच के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों के मुद्दे को लेकर हर कोई मंदसौर जाना चाह रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने मंदसौर जाएंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कल से 72 घंटे का सत्याग्रह भोपाल में शुरू करेंगे। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
पूर्वोत्तर दिल्ली के सोनिया विहार में एक मस्जिद को ढहाए जाने को लेकर इलाके में तनाव है। अंबे कॉलोनी के मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने एक छोटे से प्लॉट में मस्जिद बनाने का काम शुरू किया था और उसका इस्तेमाल भी हो रहा था। वहीं हिंदुओं का कहना है कि जब इलाके में इतने कम मुसलमान हैं तो फिर वहां मस्जिद का क्या काम। कुछ इसे जमीन का विवाद भी बता रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने इलाके का दौरा किया और दोनों समुदायों के लोगों से बात की।
पिछले बुधवार यानी 7 जून को दिल्ली पुलिस के PCR पर सूचना दी गई कि एक भीड़ सोनिया विहार के अंबे कॉलोनी में मस्जिद को ढहा रही है। मुश्ताक अहमद का घर ढहाई गई मस्जिद के दो घरों के बाद पड़ता है।
हम लोगों ने पहले रमजान से नमाज पढ़ना शुरू किया और उसके बाद एक हफ्ते के बाद कुछ भाई लोग कॉलोनी से मिल करके इसे गिरा दिए। बस इतनी ही सच्चाई है।
पेशे से रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री में छोटा मोटा धंधा करने वाले मुश्ताक हालांकि अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन मिल रही धमकियों से पूरा खानदान बेहद डरा हुआ है। उनकी बीवी आमिना बिना प्लास्टर के दीवारों वाले कमरे में लगी चौकी के पास खड़ी हैं।
हमारे हिसाब से यही हुआ है कि मतलब हमारे कुरान को जलाया गया है और पैरों से कुचला गया है। हमें टूटने की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ ये तकलीफ है कि हमारे कुरान को बेअदबी हुआ है और धमकी ऊपर से भी मिल रहा है कि इन लोग के फैसला होने के बाद इन लोग एक एक कर को कुत्तों के जैसे मौत मारेंगे।
दर्जन भर पुलिस की टुकड़ी मस्जिद के पास मौजूद एक खाली प्लॉट में खाट और कुर्सियां डालकर चौकीदारी पर लगी हैं। पूर्वोत्तर दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर देवेंद्र आर्या ने कहा कि पुलिस शाम के वक्त खास तौर पर इफ्तार के वक्त वहां रास्तों और गलियों का दौरा करती है। विमलेश मौर्य ने भी मस्जिद तोड़ने वाली भीड़ को देखा था।
सब ड्यूटी चले गए थे, पब्लिक एक बार में आई, कभी कब 700-800 पब्लिक थी। हम ये नहीं जानकारी दे सकते चौहान पट्टी के सभापुर सोनिया विहार नसीब विहार के कहाँ के हैं, इसके बारे में नहीं पता। एक बैग भिड़ गए, हम तो काम में हाँ रोड पे मैं झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद में पब्लिक आई कहाँ की थी क्या हुआ।
विमलेश दावा करती हैं कि वो यहाँ आकर बसने वालों में सबसे पहले परिवार से हैं, लेकिन साथ ही वो मस्जिद बनने की बात पर कहती हैं
गांव के आदमी नहीं चाहते, गांव है उनके बीच में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए उनको इतराज होता है या कैसे क्या वो नहीं चाहते। तो मस्जिद है उनकी, गांव है उनका, गांव है वो मंदिर बनाए या अखाड़ा बनाए, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ 25 गज जमीन लिया है कोई भाई यहाँ पे।
कृष्णपाल शर्मा कुछ महीनों पहले ही बागपत से बेटे के पास आए हैं और उन्हें जो पता है
वो ये बता रहे थे कि भाई ये मंदिर के नाम का प्लॉट छोड़ा हुआ है और इसमें कोई पंडित जी रहते हैं, वो हरिद्वार गए हैं तो इन्होंने किसी ने फ़ोन किया होगा उस पंडित जी को, वो आ गया तो यहाँ फिर ये FIR वगैरह दर्ज हुई है। कुछ फिर ये दीवारें वारे गिराई गई हैं, इसमें और कुछ नहीं था। शिवलिंग वगैरह एक रखी थी, वो रामायण वगैरह की आवाज़ गीता वगैरह पढ़ता था, फिर इसमें बाद में गली में नमाज ववाज भी पड़ी हुई।
इस बीच अंबे कॉलोनी की गली नंबर 2 के प्लॉट नंबर 149 को लेकर अफवाहें जारी है। व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे मैसेज में हिंदुओं से कहा जा रहा है कि जब वहां 8 से 10 घर ही मुसलमानों के हैं तो फिर वहां मस्जिद क्यों बन रही है। उनसे कहा जा रहा है कि इस इस्लामिक प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। पुलिस ने मामले में ज़मीन के मालिक अकबर अली की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
पनामा ने ताइवान से कई दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं और चीन से राजनीतिक संबंध स्थापित करने का फैसला लिया है। इसे चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ताइवान ने कहा है कि वो चीन के साथ कूटनीतिक मनी गेम में मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे ब्यौरे के साथ इंदु पांडे।
पनामा ने ताइवान के साथ लंबे समय से जारी राजनयिक संबंधों को तोड़कर चीन के साथ संबंध स्थापित किए हैं। चीन ने पनामा के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं ताइवान ने पनामा के इस फैसले पर अफसोस जताया है। पनामा ने कहा है कि वो ओनली वन चाइना को मान्यता देता है और ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। पनामा के विदेश मंत्री इजाबेल सेंट मालो के शब्दों में, पनामा गणराज्य और चीन गणराज्य ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं आज अपने देश की तरफ से चीन के साथ राजनीतिक संबंध शुरू करते हुए काफ़ी खुश हूँ। आज हम उन 174 देशों के साथ जुड़ रहे हैं जो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। पनामा ने आज ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया है। इसके साथ ही चीन को इकलौती वैध सरकार की मान्यता देते हुए ताइवान के साथ सभी तरह के आधिकारिक संबंधों को तोड़ा जा रहा है। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है और यही वजह रही है दोनों के बीच तनाव की। ऐसे में पनामा का यह फैसला चीनी सरकार के लिए वैश्विक राजनयिक संबंधों के संदर्भ में एक बड़ी जीत है।
पनामा ने ताइवान से राजनीतिक संबंध तोड़े।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। कश्मीर की 12वीं कक्षा की लड़की जूफा इकबाल ने एक नामदा रोलिंग मशीन बनाई है जिससे नामदा बनाने वालों को काफी राहत मिलेगी। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जूफा ने इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन एक साल तक काम किया जिसके बाद उनको कामयाबी मिली। नमदा दरअसल कश्मीरी हस्ताशिल्प का एक हिस्सा है। नमदा घर के फर्श की सजावट के काम आता है जो मैट्रेस की शक्ल का होता है। नमदा रोलिंग मशीन बनाने का ख्याल जुबा को 2 साल पहले आया।
मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, तो वहाँ पर मतलब यूजुअली हर साल 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है हर स्कूल से फॉर अ प्रोग्राम NHLPC इंस्पायर 2015। तो उसमें मेरे स्कूल से मुझे सिलेक्ट किया हुआ था, तो उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था। तो हम लोग यूजुअली इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव होते थे, तो हम लोग ज्ञान सेल कश्मीर यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पर उन्होंने हमें कहा, व्हाई डोंट यू मेक समथिंग कल्चर ओरिएंटेड, मतलब आप अपने कल्चर के लिए कुछ बनाओ ताकि वो भी प्रिजर्व हो और आपके अपने लोगों को भी फ़ायदा हो। तो वहाँ पर वो स्ट्राइक हुआ। फॉर्चुनेटली मैं उस दिन घर आई तो मैं टीवी पे देख रही थी ऐसे चैनल्स, तो वहाँ पर मुझे दिखा कि इसी इंडस्ट्री बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री हो रही थी, तो मैंने सोचा इसी पे क्यों नहीं हम कुछ बनाते, क्योंकि इसमें अभी तक कोई इंटरवेंशन आया नहीं था। तो मैंने सोचा जो भी दिया जाएगा वो बहुत एक्सेप्टेबल होगा, तो आई स्टार्टेड मेकिंग दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
जुफा कहती हैं कि जब इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम शुरू किया तो उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं था कि ये किस तरह बनाया जा सकता है। वो बोली,
मैं सर्वेस पे गई, यहाँ पर एक बनाते हैं यहाँ, मतलब अब यूजुअली ये क्राफ्ट यहाँ प्रैक्टिस नहीं होता है। नौहाटा में एक अंकल है, उनके पास मैं गई तो उन्होंने, मैंने एक्चुअली पूरा देखा कि वो कैसे बनाते हैं एक्सेट्रा, तो तब मुझे समझ आया कि मतलब जो मैं कर रही थी वो टोटली ऑपोजिट था जो वो एक्चुअली करते हैं उसके।
हाथ से बनाए जाने वाले नमदा को करीब 5 घंटे का समय लगता है। तहम जुफा का दावा है कि जिस मशीन को उन्होंने बनाया है उससे काफ़ी वक्त नमदा बनाने में बचाया जा सकता है। इस नमदा रोलिंग मशीन में मोटर लगा होता है जो बिजली के जरिए चलता है। नमदे का बुनियादी मवाद तैयार करके फिर इस रोलिंग मशीन में डाल दिया जाता है जिसके बाद नमदा तैयार होकर बाहर निकलता है। जुफा को हर जगह मुकाबलों में जजों के सामने अपने मशीन से नमूने तैयार करके देने पड़े हैं। यहाँ तक आने के लिए जुफा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है।
मतलब ऐसे बहुत चीज़ें आई हैं आज तक कि जब मुझे लोगों ने बोला है तुम पता नहीं क्या फैंटेसी वर्ल्ड में हो, तुम पता नहीं क्या सोच रही होती हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो आप बता रहे हो, बिल्कुल भी कुछ अलग है।
जुफा को आज तक इस कारनामे के लिए कई सारे तमगे भी मिले हैं। जुफा ने हाल ही में NIT और मेडिकल एंट्रेंस दिया है और अभी रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। जुफा के पिता शेख अहमद इकबाल कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर नाज है और उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के लिए कुछ करने का खुला मैदान छोड़ दिया था।
साथ होगा इसके साथ, जहाँ तक मैं हूँ मैं इसके साथ रहूँगा, किसी भी फील्ड में ले जाएगी तो मुझे इंशाल्लाह मैं इसको मतलब मदद करूँगा जितना मुझसे हो सकता है।
लड़कियों के आगे आने पर जुफा कहती हैं,
कश्मीर की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया अगर देखे, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखे, तो जो वो अप्रोच था टूवर्ड्स अ गर्ल चाइल्ड काफी सालों से बहुत चेंज हो रहा है।
श्रीनगर में क्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर यासिर अहमद इस हवाले से कहते हैं कि जुफा ने जो मशीन बनाई है ऐसा कश्मीर में पहली बार हुआ है। कश्मीर में इस समय बहुत ही कम संख्या में लोग इस नमदा उद्योग से जुड़े हुए हैं। नमदा बनाने की कला अब कश्मीर में मर रही है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
क्या चलता है उन्मादी भीड़ के दिमाग में, ये उनसे बेहतर कौन बता सकता है जिन्होंने खुद ऐसी भीड़ का सामना किया हो। उन्मादी भीड़ के हमलों के मामले में झारखंड पूरे देश में कुख्यात हो गया है। भीड़ के उन्माद पर शुरू हो रही श्रृंखला की पहली कड़ी में सुनिए उन लोगों को जिन्होंने भीड़ के बीच खुद को बेबस पाया और आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ देखा। सलमान रावी की रिपोर्ट।
भैंस लेने के लिए गए थे, वहां हमको जी भैंस नहीं मिली, इसलिए हमने दो गाय दूध वाली।
ये हैं पहलू खान के पुत्र इरशाद खान, जिनके पिता की हत्या राजस्थान के अलवर में उन्मादी भीड़ द्वारा पीट पीट कर कर दी गई थी।
निकल आए बैरोड मैन पुल को पास करते ही 8-7 आदमी दो मोटरसाइकिलों पे बाइकों पे हमारे पाछे आए और उसने हमसे बोला कि गाड़ी रोक लो। हमने उससे बोला कि हम।
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के साथ बातचीत में इरशाद ने उस दिन के पूरे घटनाक्रम को याद करते हुए कहा,
उसके लिए हमें अपनी पर्ची दिखाने की कोशिश करी ताकि उसने हमारी पर्ची नहीं देखी, हाथ में से लेकर फाड़ कर फेंक दी। हमको इतना मारा, सब लोगों को इतना मारा कि हम बेसुध रोड पर गिर दिए।
उन्मादी भीड़ के दिलो दिमाग पर जुनून सवार रहता है, एक ऐसा जुनून जो उसे हैवानियत के दरवाजे तक ले जाता है। अफवाह इस आग में घी का काम करती है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में भी एक ऐसी ही उन्मादी भीड़ का शिकार हुए तीन भाई और उनके परिवार के लोग, जिन्हें बच्चा चोर होने के संदेह में उन्मादी भीड़ ने इतना पीटा कि उनमें से दो भाइयों विकास और गौतम और उनके एक दोस्त ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीसरे भाई उत्तम ने स्थानीय पत्रकार रवि प्रकाश को बताया कि किस तरह उन्होंने खुद को भीड़ के सामने बेबस पाया।
ऐसे हम लोग नागाड़ी जैसे क्रॉस करते हैं ना, तो आप अभी देखिएगा पीएनटी का जो पाइप लोहा नहीं होती है, रोड में गिरा करके करीब करीब 75-100 आदमी सब मतलब हथियार के साथ, मतलब पूरा कुल्हाड़ी उलाड़ी डंडा वंडा और तलवार वाला सब लेके बैठा हुआ, मतलब तीर धनुष के साथ। उसी से प्रशासन की गाड़ी आ गई, प्रशासन आ गई तो हम लोग थोड़ा हिम्मत हुआ कि चलो ये पुलिस गाड़ी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या ना हम लोग, तो पुलिस वाला बोला भी अगर बच्चा चोर है तो चलो भाई चलो ये कदा है सब थाना लेके चलो, सबको सबका हिसाब होगा वहीं पर ही। तो हम लोग बोले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जाने के तैयार हुए, तो सब गाँव वाले सब लोग रोक लिए, बोला नहीं जाने नहीं देंगे, समझे ना। कम से कम एक जन पर ना 20-25 जन मतलब पूरा पकड़े हुए थे पूरा। तो हम एक्चुअली माँ के साथ थे, माँ कंधा में हाथ दिए हुए थे, तो हम तो ज़्यादा प्रेशर नहीं।
उत्तम का कहना था कि भीड़ में जमा लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। अपने दो पुत्रों की मौत के बाद उत्तम के पिता सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।
आई सभी के साथ में ऐसा दुर्भाग्य किए हैं, मेरा नसीब फूट गया है ना, क्या ऊपर वाला क्या मेरे पर कहर, हमारे बच्चे क्या होगा हमको नहीं मालूम। अच्छा। हम क्या करेंगे, हम कहीं कर नहीं रहेंगे,
अच्छा लगता बच्चा,
ये तो हमको लग रहा है क्या होगा मेरे बच्चे के साथ, मेरी माँ को मार दिया।
वहीं जमशेदपुर से लगे झारखंड के ही सरायकेला खरसावां जिले में भी ऐसी ही एक भीड़ ने शोभापुर गांव पर हमला किया और चार लोगों को पीट पीट कर मार डाला। पत्रकार रवि प्रकाश ने इस पूरी घटना के चश्मदीद शमसुल हक से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भीड़ ने लोगों को घरों में से घसीट घसीट कर पीटा।
पता चला तो हम लोग प्रयास ही किए कि लोगों को समझाने का कि भाई ये बच्चा चोर नहीं है, बच्चा चोर नहीं है। लोगों का यही कहना था कि ये बच्चा चोर है और बच्चा चोर का गाड़ी है और उन्हें निकालिए, उन्हें हमारे हवाले कीजिए, यही बात जो है भीड़ जो है कह रही थी। तो हम लोग काफ़ी प्रयास किए समझाने का, लेकिन लोग किसी का बात नहीं मान रहे थे और नईम को घसीटते हुए ले जाके उसको रोड पे मार दिया गया।
शोभापुर के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जिन पड़ोस के गाँव के लोगों के साथ वो उठते बैठते थे, वो अचानक ऐसे कैसे इतने उन्मादी हो गए।
हम लोगों को सोच से भी बाहर है और सोचते सोचते भाई हुआ क्यों, आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा ऐसा लीडर क्लीन गांव में अगर ऐसा हो तो सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी हो तो गया, इसलिए जो है कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है दिल में, बाकी सब ठीक है।
अब डर भी लगता है किसी चीज़ का कि कहीं फिर से उस तरह की बात ना हो जाए दोबारा। हाँ,
कभी कभी ये सोच आती है दिल में, लेकिन फिर मुतमईन हो जाता हूँ ये सोच के कि ये लोग जितने भी हैं अगल बगल के जितने भी हमारे मैंने गायक कौम है, इन लोगों से हम लोगों का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा, बहुत ही बढ़िया रिलेशन रहा, इसलिए थोड़ा मुतमईन भी हो जाता हूँ, अब ऐसा नहीं भी हो सकता है।
جھارکھنڈ پولیس کے پروکتا راج کمار ملک کا کہنا تھا کہ جس طرح مارے گئے لوگوں پر بچوں کی چوری کا آروپ لگایا گیا تھا وہ بالکل غلط نکلا.
افواہ کچھ گرامین چھیتروں میں پھیلی تھی کچھ کچھ جگہوں پر کہ کچھ لوگ بچے کی چوری کرنے کے لیے گھومتے ہیں. آج تک کوئی بچے کی چوری کی کہیں کوئی شکایت درج نہیں ہوئی ہے. یہ غلط افواہ پر یہ اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے. لوگ تیجنا میں آ کر کے بنا سوچے سمجھے لوگوں نے گھٹنا کیا ہے.
بھیڑ کے انماد کے دو پہلو ہیں, ایک ہے پہلو خان اور دوسرا پہلو اتم کے بھائی. ایک طرف ایسی بھیڑ جو اچانک جمع ہو جاتی ہے تو دوسری طرف ایسی بھیڑ جسے کچھ خاص راجنیتک ادیشوں کی وجہ سے کسی کے خلاف بھڑکانے کے لیے مہینوں ابھیان چلایا جاتا ہے. رانچی سے روی پرکاش کے ساتھ سلمان راوی, بی بی سی دلی.
چیمپئنز ٹرافی میں دونوں گروپوں سے دو دو ٹیمیں انتم چار میں پہنچ گئی ہیں. سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ, بتا رہے ہیں ویبھو دیوان.
انگلینڈ میں چل رہی چیمپئنز ٹرافی میں سیمی فائنلز میں بھارتیہ مہادویپ کی تین ٹیمیں پہنچیں گی, ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. پاکستان, بھارت اور بنگلہ دیش, یہ تینوں ٹیمیں سیمی فائنلز میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں. کل رات پاکستان نے سری لنکا کو ہرایا, جس کے بعد انہوں نے اپنی جگہ سیمی فائنل میں پکی کی. چوتھی ٹیم سیمی فائنل میں ہے انگلینڈ. کل کھیلا جائے گا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل, اس میں پاکستان کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ. آج میرے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کے دو ایکسپرٹس. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایاز میمن سے, سینئر جرنلسٹ ہیں, کرکٹ کے بارے میں لکھتے رہے. ایاز سر, کیا آپ نے ایسا سوچا تھا, امیجن کیا تھا کہ سیمی فائنلز کا ایسا حال ہوگا؟
میرے خیال سے کسی نے نہیں امیجن کیا تھا کہ یہ لائن اپ ہوگا سیمی فائنل کا. ہاں, انڈیا جو ہے وہ پری ٹورنامنٹ فیورٹ تھی, انگلینڈ سب جانتے تھے کہ مضبوط ٹیم ہے اور ہوم کنڈیشن میں کھیل رہی ہے, لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش سیمی فائنل میں آئے گی, میرے خیال سے کسی نے یہ سوچا نہ ہوگا. لیکن یہ بتاتا ہے کتنا الٹ پھیر ہوا ہے اس چیمپئنز ٹرافی میں.
جی, میرے ساتھ ہیں بھارت کے لیے کرکٹ کھیل چکے آکاش چوپڑا, جو آج کل کمنٹری بھی کرتے ہیں. آکاش, یہ بتائیے کہ کتنا روچک بنا دیا ہے اس چیمپئنز ٹرافی کو ایسے سیمی فائنل ٹائز نے.
دیکھیے, مزیدار تو ہو گیا ہے کیونکہ تین ایشین ٹیمز پہنچ گئی ہیں سیمی فائنل تک اور ایک ہوسٹ ہیں, تو یہ اب پتا چل جاتا ہے بھیا جو میزبان ہے وہ تو چلو پہنچنا چاہیے, باقی ورلڈ کرکٹ کا پاور ہاؤس کہاں ہے وہ ہمیں تھوڑی سی اس کی جھلکی مل گئی ہے.
اب میں واپس جانا چاہوں گا ایاز میمن کے پاس. سر, اگر کل پاکستان جیتی ہے انگلینڈ سے اور بھارت جیتی ہے بنگلہ دیش سے, تو کیا بھارت اور پاکستان کا فائنل, یہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا؟
یہ خواہش ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ کرکٹ لاجک یہ نہیں ڈکٹیٹ کرتی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پاسبل تو ہے ہی, کیونکہ انگلینڈ تینوں میچز جیتی ہے, ایک بھی سیٹ بیک نہیں ہوا ہے, کہیں لا آف ایوریجز ان کے بڑے پلیئرز کے ساتھ بڑے پلیئرز کو پکڑ لیا, اور پاکستان جو ہے اپنے پوٹینشیل سے اونچا کھیلتی ہے تو پھر فائنل میں پہنچ سکتی ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ انڈیا کو بنگلہ دیش کو ہرانا ہے, یعنی دونوں ٹیمز اگر سیمی فائنل جیتے تو ہی فائنل کا ایک پاسبلٹی بنتا ہے.
آکاش چوپڑا کے پاس پھر چلتے ہیں. آکاش, اگر اب اس ٹورنامنٹ میں فائنل میں انڈیا اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوتی ہے تو کیا ہونے والا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟
یار, وہ ہوگا obviously repeat of 2013 کا چیمپئنز ٹرافی فائنل, اور اگر 50 اوور کا پورا میچ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ میزبان ٹیم کا تھوڑا سا پلڑا ہمارے سے بھی زیادہ بھاری ہے. اگر ہم انگلینڈ کو تھوڑا سا بھی کم آنک لیں, کیونکہ اگر مین ٹو مین مارکنگ دیکھیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, تو لگتا ہے کہ انگلینڈ جو ہے ہم سے تھوڑی سی 21 ہے.
انگلینڈ میں چل رہی آئی سی سی ٹرافی, کل پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ, یہ ہے پہلا سیمی فائنل, اور دوسرا بھارت کا ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ پرسوں, جو کھیلا جائے گا برمنگھم میں.
اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. بنگلہ دیش میں مانسون کی بھاری بارش کے کارن ہوئے بھوسکھلن کے کارن کم سے کم 70 سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی ہے. ترکی کے راشٹرپتی رچپ طیب اردوان نے کئی عرب دیشوں کے قطر کو الگ تھلگ کرنے کی کڑی آلوچنا کی ہے اور اسے امانوی اور اسلامی مولیوں کے ورودھ میں لیا گیا قدم بتایا ہے. کینیا کی راجدھانی نیروبی میں ایک 7 منزلہ عمارت کے گر جانے سے 15 لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں. دیش کے پورو میں استھت یہ عمارت سوموار رات گر گئی تھی. فلپینز کے مراوی شہر میں پھنسے عام ناگرک کتھت اسلامک لڑاکوں سے بچنے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. زمبابوے نے اپنے دیش کے کسانوں کو بچانے کے لیے دیش میں کھادیانے کے آیات پر روک لگا دی ہے. سرکار کا کہنا ہے کہ ان کے کسان پورے دیش کی ضرورت کا کھادیان اگا رہے ہیں. بی بی سی سماچار.
دن بھر میں آج اتنا ہی. اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے راجیش چوہان. ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. نمسکار. Oh, oh, oh.